بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو توریت پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا، اور یدی کافروں کو سمے دینے کے سمبندھ میں आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता, और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा, और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें, कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है, और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी, और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा यह प्रसारण आप शारपे में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, मुर्दाद की 11, जिलिजा की 22 और अगस्त की 2 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे विश्व दर्पण, और अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। गुरुवार को ईरान के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। शपथ समारोह में 73 देशों के 115 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसराइली टैंकर पर हमले का आरोप ईरान पर लगाकर तेहरान के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। इसराइली टैंकर पर हमले के ईरान पर निराधार आरोपों के प्रति तेहरान ने चेतावनी दी है। यूपी में मुहर्रम के जुलूसों और आजादारी को निशाना बनाकर शियों को बदनाम करने और समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरानी संसद के निदेशक मंडल के प्रवक्ता ने कहा है कि 13वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को संसद में आयोजित होगा, जिसमें 73 देशों के 115 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर अधिक जानकारी देते हुए सैयद निजामुद्दीन मूसवी ने कहा, इस राष्ट्रीय आयोजन के महत्व और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के पालन के मद्देनजर विदेशी और स्वदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम सूचना के प्राप्त होने तक विभिन्न देशों के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समारोह में शरीक होने वाले हैं। मूसवी का कहना था कि गुरुवार को आयोजित होने वाले नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में 20 देशों के संसद सभापति, 11 विदेश मंत्री, 10 मंत्री और कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। ईरानी संसद के निदेशक मंडल के प्रवक्ता का कहना था कि 11 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी तेहरान में होने वाले इस समारोह में भाग लेंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रतिनिधि, ओपेक प्रमुख, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ओमान सागर में गुरुवार को एक इसराइली टैंकर पर हुए हमले का आरोप ईरान पर मढ़ने के लिए अब अमरीका और ब्रिटेन ने भी ज्वाइंट शासन के आवास में आवाज मिलाना शुरू कर दी है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को दावा किया कि प्राप्त जानकारी की समीक्षा से हमें यह विश्वास है कि हमला ईरान ने किया है, जिसमें 2 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। ब्लिंकन का कहना था कि वे तथाकथित उचित प्रतिक्रिया के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने दावा किया था कि ईरान ने 1 या अधिक ड्रोन विमानों का उपयोग करके गैरकानूनी और कठोर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि यह हमला जानबूझकर लक्षित और ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। लंदन इस पर ठोस प्रतिक्रिया के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। रविवार को ईरान ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बचकाना बताया और कहा कि अमरीका में ज़ायनी लॉबी से प्रभावित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा, हमें ज़ायनी शासन द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसने के लिए बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इसराइल अपने अवैध जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जिस जहाज को निशाना बनाया गया है वो इसराइली कंपनी जोडियाक मैरीटाइम द्वारा संचालित किया जा रहा था। रिपोर्टों के अनुसार ये जहाज तंजानिया के दारुसलाम से यूएई की फुजैरा बंदरगाह के रास्ते में था। ज़ायनी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तेहरान पर हमले की जिम्मेदारी से बचने के प्रयास का आरोप लगाया है।
गुरुवार को ओमान सागर में एक इसराइली कंपनी के ऑयल टैंकर पर हुए हमले को अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान को घेरने के लिए बहाना बना रहे हैं। बिना किसी दस्तावेज या सबूत के ईरान पर इस हमले का आरोप मारना और उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं जताना बताता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। शुक्रवार को इसराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिद ने आधिकारिक रूप से इस घटना को एक हवाई हमला करार दिया और इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया, जिससे इस मुद्दे की संवेदनशीलता का पता चलता है। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने नूर न्यूज से बात करते हुए कहा है कि तेहरान पश्चिमी और इसराइली अधिकारियों की धमकियों को एक प्रचारिक हथकंडा समझता है, लेकिन अगर उन्होंने ईरान के हितों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से वाशिंगटन और लंदन के कंधों पर होगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वाशिंगटन और लंदन के आरोपों को निराधार बताते हुए रद्द कर दिया है। सईद खतीबजादे ने कहा, अमरीकी और ब्रिटिश अधिकारियों के बयानों में साफ विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि शुरू में वे बिना किसी सबूत के हमले का आरोप ईरान पर लगाते हैं, उसके बाद उसकी संभावना व्यक्त करते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से DGP मुकुल गोयल ने रविवार को मुहर्रम के महीने में मातमी जुलूसों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिस पर देश भर के शिया मुसलमान कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किए इस सर्कुलर के मुताबिक मुहर्रम के महीने में जुलूसों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। बीजेपी की प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में आज़ादारी और जुलूसों से जुड़े कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिन्हें शिया धर्मगुरु पूरी तरह से मनगढ़ंत और समाज में फूट डालने वाला बता रहे हैं। पुलिस की गाइडलाइंस को देखकर ये साफ हो जाता है कि इसमें दिए गए दिशा निर्देशों का कोरोना प्रोटोकॉल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों से मुहर्रम की ऐतिहासिक आज़ादारी को निशाना बनाया जा रहा है। गाइडलाइंस के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में आरोप लगाया है कि पुराने लंबित धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नए उठने वाले विवादों, अपरंपरागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौ वंश व्यय परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। इसी तरह से इसमें शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेदों को भी हवा देने की कोशिश की गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जवाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा कि पुलिस गाइडलाइंस में शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और उन्हें अपमानित किया गया है। इसमें झूठी और मनगढ़ंत बातें शामिल की गई हैं। शिया मुहर्रम में तबरा पढ़ते हैं, जिससे झगड़ा होता है, जबकि मुहर्रम के जुलूस में तबरा नहीं पढ़ा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आवारा पशुओं पर तबरा लिखे जाने वाली बात भी بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ محرم کے ذریعے ہندو مسلم دنگا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ یو پی ڈی جی پی کی طرف سے جاری کی گئی گائیڈ لائن کم اور کسی القاعدہ کے آتنکوادی کا بیان زیادہ لگ رہا ہے۔ مولانا کلب جواد کا کہنا تھا کہ جب یہ گائیڈ لائنز واپس نہیں ہوتی تب تک ہم لوگ ان کی پیس میٹنگ کا بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ اس کی شکایت لے کر ہم مکھیہ منتری اور پردھان منتری تک جائیں گے۔
بھارتیہ سرکشا بلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اور سے بھارتیہ سیما میں 4 ڈرون بھیجے گئے۔ استھانیہ پولیس نے جانکاری دی ہے کہ جموں کشمیر کے سامبا میں دیر رات 4 سندگھ ڈرون ویمان دیکھے گئے۔ سامبا کے ایس ایس پی راجیش شرما نے بتایا کہ سامبا کے باری براہمڑا علاقے میں دیر رات 4 جگہوں پر ڈرون کی سندگھ گتیویدھیوں کی سوچنا ملی ہے۔ بھارتیہ سرکشا بلوں کا دعویٰ ہے کہ حالیہ دنوں میں سیما پر پاکستان سے سٹے علاقوں میں کئی سندگھ ڈرون دیکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے شنیوار کی رات کو بھی سامبا میں 2 سندگھ ڈرون دیکھنے کی سوچنا ملی تھی۔ شنیوار رات جموں کے ڈومانا علاقے میں بھی استھانیہ لوگوں نے ایک سندگھ ڈرون کو دیکھا تھا۔ باری براہمڑا تھانے کے تحت تعینات جموں کشمیر پولیس کے جوانوں نے ڈرون کو دیکھا۔ ادھیکاریوں نے گولی نہیں چلائی کیونکہ ڈرون سیما سے باہر اڑ رہے تھے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں جموں کشمیر میں ڈرون کی گتیویدھیاں بڑھ گئی ہیں۔
افغان سینا کا کہنا ہے کہ بھارتیہ پترکار دانش صدیقی کی موت کراس فائرنگ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ طالبان نے جان بوجھ کر انہیں پہلے پکڑا اور پھر بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کے پروکتا اجمل عمر شنواری نے ادھیکارک طور پر بیان میں کہا کہ پولیتزر پرسکار وجیتا دانش کو پہلے طالبان نے اپنے قبضے میں لیا اور بعد میں مار ڈالا۔ اجمل نے کہا کہ دانش کے شریر کو شت وشت کیا گیا تھا یا نہیں، جس کی جانچ ابھی جاری ہے۔ چونکہ دانش کو جہاں مارا گیا وہ علاقہ طالبان کے قبضے میں ہے، اس لیے جانچ میں تھوڑا سمے لگے گا۔
افغانستان کی کئی مہیلاؤں کے دماغ میں آج بھی 2 دشک پرانے طالبان کے شاسن کی بھیانک اور خطرناک یادیں زندہ ہیں۔ ان مہیلاؤں کو یہ چنتا پھر سے ستانے لگی ہے کہ کہیں کابل پر طالبان چرم پنتھیوں کا پھر سے قبضہ نہ ہو جائے اور ان کے بنیادی ادھیکاروں کی بلی چڑھ جائے۔ پچھلے 2 مہینوں کے دوران طالبان کی پرگتی اور ہرات، غزنی، قندھار، فرہ اور ہلمند جیسے شہروں کی دہلیز پر ان کی دھمک نے مہیلاؤں سمیت عام لوگوں کی چنتا میں وردھی کر دی ہے۔ یہ چنتا اس وقت ڈر میں بدل جاتی ہے جب مہیلاؤں اور الپ سنکھیوں کے جنسنگھار کی خبریں لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ افغانستان میں مانوادھیکار کاریکرتاؤں کا ماننا ہے کہ پچھلے 2 دشک کے دوران طالبان کے وچاروں اور ویوہار میں کوئی بڑا انتر نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ طالبان دوارا ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ناگرک ادھیکاروں کا پورا خیال رکھیں گے۔
عراقی پاپولر آرمی میں شامل فورس نوجبا آندولن کے اپ مہا سچیو نے کہا کہ امریکہ کی عراق میں اپستھتی شتروتا پورن ہے، اس لیے اسے ترنت اپنے سارے سینیہ اڈے خالی کر دینے چاہیے۔ العالم چینل کی رپورٹ کے انوسار پرتیرودھ کرتا مورچے نوجبا آندولن کے اپ مہا سچیو نصر اشمری نے کہا کہ عراق کے پرتیرودھ کرتا گٹوں کی اور سے امریکی سینکوں کو جو نقصان پہنچا ہے اسے امریکہ کو پتا چل گیا کہ عراقی راشٹر ودیشی سکوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے۔ شما کیجیے گا، اس سے امریکہ کو پتا چل گیا کہ عراقی راشٹر ودیشی سکوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں امریکی سینکوں نے اتنے اپرادھ کیے ہیں کہ اس کے بعد اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ قبضہ کرنے کی پالیسی پر چل رہا ہے، اس لیے اسے عراق سے چلے جانا چاہیے، نہیں تو امریکی ہت کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे इराक में आतंकी अमरीकी सैनिकों की गैर कानूनी उपस्थिति के बारे में,
इराक के प्रतिरोधी आंदोलन अल नुजमा ने कहा है,
और फिर बात करेंगे यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों द्वारा सऊदी गठबंधन और उसके समर्थकों को लगातार युद्ध के मैदान में दी जाने वाली मात की।
बयान صحفي ثان للمتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच संसद की कार्रवाई न चल पाने के बारे में बात करेंगे।
भारतीय संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन भी
तो सबसे पहले चलते हैं इराक और बात करते हैं इस देश में गैर कानूनी तरीके से मौजूद आतंकवादी अमरीकी सैनिकों की, जहां एक ओर अमरीका अपने सैनिकों को इराक में रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहा है, तो वहीं इराकी जनता आतंकी अमरीकी सैनिकों की जल्द वापसी की मांग कर रही है। इस बारे में एक विशेष रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
इराक के प्रतिरोधी आंदोलन अल नुजमा ने कहा है कि इराकी धरती पर किसी भी तरह की अमरीकी सैन्य उपस्थिति शत्रुतापूर्ण है और देश की सभी सैन्य छावनियों को अमरीकी सैनिकों से खाली कराया जाना और उनके इराक से वापस जाना आवश्यक है। अल आलम टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी प्रतिरोधी आंदोलन अल नुजमा के उप महासचिव जनरल नसर अशमरी ने कहा है कि इराकी प्रतिरोधी आंदोलनों द्वारा अमेरिकी सैनिकों को पड़ी मार से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका को यह अंदाजा हो गया है कि इराकी राष्ट्र विदेशी ताकतों के आगे झुकने वाला नहीं है। अशमरी ने कहा कि इराक में अमेरिकी सैनिकों ने इतने ज्यादा अपराध किए हैं कि अब उस पर किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार अपनी अतिग्रहणकारी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, वो इराक की शांति व स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अशमरी ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इराक को छोड़कर चला जाए, अन्यथा प्रतिरोधी आंदोलन द्वारा अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस बीच वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अलकाज़मी के बीच हालिया मुलाकात में प्रशिक्षण के बहाने अमरीकी सैनिकों की देश में उपस्थिति के फैसले को लेकर इराकी प्रतिरोधी आंदोलनों और इस देश के राजनीतिक और धार्मिक दलों ने तीखी आलोचना की है और कहा है कि इराक ने सुरक्षा परिषद से वायु समर्थन की मांग की है, न कि अमेरिका से, जिसका अर्थ यह है कि इराक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का समर्थक नहीं है और अमेरिकी सैनिकों ने गैर कानूनी तौर पर इराक में प्रवेश किया था। वहीं इराक में एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर हमला हुआ है। इराक में प्रतिरोधी आंदोलनों के चैनल अल एलानुल मुकाविम की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर इराक के हिल्ला शहर में हमला हुआ है। अभी तक इस हमले से होने वाले नुकसान के बारे में रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस हमले से केवल कुछ ही घंटों पहले आतंकवादी अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर इराक के दीवानिया प्रांत में भी हमला हुआ था, जिसमें अमरीकी सेना की एक गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। साबेरीन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दक्षिण इराक में स्थित दीवानिया प्रांत में अमरीका के काफिले को IFP का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका इतना भीषण था कि गाड़ियां और हथियारों से लदे ट्रक पूरी तरह नष्ट हो गए। साबेरीन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की ये खेप ऐनुल असद की ओर जा रही थी। इस हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। बहरहाल, जहां एक ओर अमेरिका किसी न किसी बहाने से इराक में रुके रहना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर इराकी जनता किसी भी स्थिति में अपनी धरती पर अमेरिका के एक भी सैनिक की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि हर दिन इराक के किसी न किसी कोने से आतंकी अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर हमले की खबरें सामने आती रही हैं।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं इस देश की सेना और स्वयंसेवी बलों को लगातार मिलती सफलताओं की। यमन के अलबैजा प्रांत में जारी अन-नस्रुल मुबीन सैन ऑपरेशन ने हमलावरों के होश उड़ा रखे हैं। इस बारे में सना से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अल यूसुफी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास की आवाज़ में।
بيان صحفي ثان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية خلال 24
यमन के अलबैजा प्रांत में जारी नसर उल मुबीन नामक सैन्य ऑपरेशन के दूसरे चरण के संबंध में 24 घंटों के बाद यमनी सेना के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। बयान में बताया गया है कि ऑपरेशन के इस चरण में 380 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र को आजाद करा लिया गया है। 160 भाड़े के सैनिक और अलकायदा के आतंकी मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक अन्य भाड़े के सैनिक घायल और गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह उनसे संबंधित दर्जनों सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया है।
بأنه من خلال فتح جبهة هنا
यमन के एक अधिकारी का कहना है कि दुश्मन समझ रहा था कि वो एक नए मोर्चे को खोलकर विशेष मोर्चे पर बढ़ते दबाव को कम कर सकेगा, लेकिन पूरे ऑपरेशन में मारिब युद्ध से हटकर जो घटनाएं घटी हैं वो ऐसी सफलताएं हैं जो हमारे हाथ लगी हैं। एक यमनी टीकाकार का कहना है कि नसरुल मुबीन ऑपरेशन का पहला और दूसरा चरण ये दर्शाता है कि यमनी बल अभी भी रण क्षेत्र में मजबूत स्थिति में हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है। युद्ध के आरंभ में हमारे सैन्य अभियान रक्षात्मक थे, लेकिन अब रक्षा के चरण से निकलकर हमले की पोजीशन में आ गए हैं। نصر المبین آپریشن کے پہلے اور دوسرے چرن میں الظاہر، السوما، نومان اور ناتے نامہ کے علاقوں کو آزاد کرانے میں سفلتا ملی ہے۔ ان کھیتروں کا کل کھیتر پھل 500 ورگ کلومیٹر انمانت ہے۔ ان دو چرنوں میں 510 دشمن سینا کے سینک مارے گئے اور 760 گھائل ہوئے ہیں۔ यमनी सेना के ड्रोन इकाई ने 19 टोही और लड़ाकू अभियानों के साथ ऑपरेशन में भाग लिया। इसी तरह मिसाइल यूनिट ने 13 ऑपरेशन अंजाम दिए, जिनमें बद्र और सईर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यमन के रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि यमनी बलों ने जिन नए इलाकों को आजाद कराया है वो कई प्रांतों की आजादी में अहम भूमिका निभाएंगे। एक यमनी अधिकारी का कहना है कि यमनी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध सीधे तौर पर अमरीकी कमान कार्यालय से निर्देशित हो रहा है, साथ ही हमलावर दाइश और अलकायदा पर निर्भर हैं। उनकी हार वास्तव में अमरीका की हार है। अलबैजा प्रांत में यमनी बलों ने सऊदी अरब के भाड़े के सैनिकों और अलकायदा के आतंकियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को विफल बना दिया है। ये कामयाबी दुश्मन के व्यापक हवाई समर्थन के बावजूद यमनी सेना की सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यमनी सेना के पास एक से अधिक मोर्चों को नियंत्रित करने की क्षमता है।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं भारतीय संसद के मानसून सत्र की। पेगासस जासूसी कांड और विवादित कृषि कानूनों को लेकर जहां दिल्ली की सड़कों पर किसान अपनी संसद लगा रहे हैं, तो वहीं इस देश की संसद में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर रखा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारतीय संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन भी आज पेगासस जासूसी कांड और विवादित कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाइयां अब तक काफी प्रभावित रही हैं। विपक्ष संसद के दोनों सदनों में पेगासस कथित जासूसी कांड और किसान आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि कथित जासूसी कांड पर केंद्रीय मंत्री संसद के दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं और किसान आंदोलन सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा उसी समय हो सकती है जब विपक्ष संसद में शांति बहाल करे। बताया जाता है कि संसद में निरंतर हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित होने से अब तक 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकार और विपक्ष इस गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। AIAM सांसद असदुद्दीन ओवैसी।
विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है, तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार।
उधर नए कृषि कानूनों के विरुद्ध जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसे किसानों ने किसान संसद का नाम दिया है। किसानों ने इन कृषि कानूनों को कॉरपोरेट के हित اور کسانوں اور دیش کی جنتا کے ورودھ بتایا اور ان قانونوں کو واپس لیے جانے تک اپنا آندولن جاری رکھنے کی پرتیبدھتا ویکت کی۔
یہ اڈانی امبانی کی سرکار ہے، مودی کا تو نام ہے، یہ اسی طرح ساری چیز کی سدوتن کر کے انہیں نجی ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے، اور اس کا ہم کھل کے ورودھ کرتے ہیں، جگہ جگہ پردرشن کریں گے، اس کے ہم لاگو نہیں ہونے دیں گے۔
کسانوں نے اب بجلی بل کو بھی کارپوریٹ کے ہت اور کسانوں کے ورودھ بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ یہ بل پارت نہیں ہونے دیں گے۔
سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ الیکٹریسٹی امینڈمنٹ بل 2020 وہ نہیں لے کر آئیں گے، لیکن پھر بھی سرکار اس بل کو لانا چاہتی ہے۔ سرکار کی منشا کیا ہے؟ 70 ورشوں میں ہمارے بزرگوں نے 1947 کے بعد وطن کو کھڑا کیا تھا، یہ جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ سڑکیں ہیں، الیکٹریسٹی ہے، یہ عام ناگرک کے ٹیکس سے بنی ہوئی ہے، آج اسے کارپوریٹ کے حوالے دینا چاہتے ہیں۔
نئے کرشی قانونوں کے خلاف دلی کی سیماؤں پر کسانوں کے دھرنے پچھلے 8 مہینوں سے جاری ہیں اور اس مدے کو لے کر سرکار اور کسانوں کے بیچ گتیرودھ سماپت ہونے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہماری آج کی سبھا کا انتیم کارکرم ہوگا جل سنکٹ، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کارکرم وش درپڑ۔
وشو درپن۔ دوستو، کارکرم وشو درپن میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم میں ہم بات کریں گے سیریا اور عراق میں امریکی سینکوں کے خلاف جاری پرتیرودھ کی۔ جہاں امریکہ نے ایک اور افغانستان سے اپنے سینکوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، وہیں عراق اور سیریا میں بھی امریکی سینکوں کی غیر قانونی تعیناتی کے خلاف پرتیرودھ تیز ہو گیا ہے۔ امریکہ نے عراق کے بھیتر ڈرون حملہ کر کے داعش کے خلاف ایتہاسک جنگ لڑنے والے ایران اور عراق کے کمانڈروں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا، جس کے بعد امریکی سینکوں کی اپستھتی کے خلاف عراقیوں میں پکنے والا لاوا جوالا مکھی بن گیا۔ حالات ایسے بنے کہ امریکہ پر اپنے سینکوں کو عراق سے باہر نکالنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا، کیونکہ امریکی سینا کے آتنکی حملے کے بعد عراق کی سنسد نے ایک پرستاؤ پارت کر کے امریکی سینکوں کو عراق سے باہر نکالے جانے کی مانگ کی۔
اطلب من المجلس التصویت على القرار۔ سید النائب، سید النائب، تمت الموافقہ على القرار۔
حالیہ دنوں عراق کے پردھان منتری مصطفیٰ الکاظمی نے واشنگٹن کا دورہ کیا، جہاں راشٹرپتی جو بائیڈن سے ان کی ملاقات میں امریکی سینکوں کو عراق سے نکالنے کے وشے پر بات ہوئی۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے عراقی پردھان منتری مصطفیٰ الکاظمی سے ملاقات کے سمے کہا کہ عراق میں امریکی سینا کے مشن کی پروتی بدل جائے گی۔
Our shared fighting against ISIS is critical for the stability of the region. And our counter-terrorism cooperation will continue even as we shift to this new phase we're going to be talking about.
روچک بات یہ ہے کہ جارج بش نے عراق میں سینا اتاری، جسے انتتہ 8 سال بعد 2011 میں اوباما نے پوری طرح عراق سے واپس بلایا تھا۔
America's war in Iraq will be over.
مگر پھر داعش کا بہانہ مل گیا تو امریکی سینک عراق میں ایک بار پھر منمانی کرنے لگے، لیکن عراقیوں کے پرتیرودھ کے سامنے انہیں وہاں سے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک بار پھر عراق میں امریکہ کے خلاف آکروش بہت بڑھ گیا ہے۔ عراق میں آتنکواد سے سنگھرش کے لیے گٹھت ہونے والی پاپولر فورس کے ایک سنگٹھن اصائب اہل حق کے پرمکھ شیخ قیس خزالی نے چیتاونی دی ہے کہ عراق میں امریکی سینکوں کی اپستھتی جاری رہنے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ شیخ خزالی نے کہا کہ امریکی سرکار عراق سے اپنے سینکوں کو نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ عراق کے بھیتر امریکی ویمانوں کی اڑانیں جاسوسی کے ادیشے سے انجام پا رہی ہیں۔ عراق امریکہ رنیتک وارتا میں عراق سے امریکی سینکوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ کیول شبدوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ خزالی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے فارس کھاڑی کو امریکی یدھک ویمانوں اور یدھک نوکاؤں سے پاٹ دیا ہے، لیکن عراق میں امریکی فورسز کو تعینات رکھنے کی امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ عراقی فورسز کو ٹریننگ دینے یا اسی طرح کے دوسرے بہانوں سے عراق میں تعینات رکھے، مگر پاکستان کے ورشٹھ ٹیکہ کار راشد عہد کا کہنا ہے کہ امریکہ عراقی فورسز کو کیا ٹریننگ دے گا، وہ تو داعش کو ٹریننگ دیتا رہا ہے۔
صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ کی کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے موجودگی عراق کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے انتہائی ضرر رسا ہے، اور ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی، یعنی کہ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بات یہ موجود ہے کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سوائے فساد کے، بدامنی کے، اور خصوصاً کسی ملک کے اندرونی معاملے میں مداخلت کر کے وہاں کے عوام کو باہم دست و گریما کرنے کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد نہیں ہوتا، اور مزید وہ ملک، وہ خطہ فساد سے دو چار ہو جاتا ہے۔ وہاں جو ہے یہ ٹریننگ وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں کہ امریکنز کیا ٹریننگ دیں گے، امریکنز تو داعش کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ امریکنز نے 2014 میں امریکنز تھے جنہوں نے لانچ کیا داعش کو، جبکہ 2011 میں نور لال مالکی کی ڈپلومیٹک کوششوں کی وجہ سے وہ لے گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے داعش کو لانچ کیا پوری ٹریننگ دے کر کے، اور یہاں تک کہ لانچ کر کے پھر جو ہے وہ انہوں نے جواز بیان آیا اور وہ امریکی فوج پھر آ گئی عراق میں۔ تو امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ عراق سے اپنی گرفت کو، اپنے تسلط کو ختم کرے، امریکہ کبھی نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ وہاں برابر موجود رہنا چاہتا ہے اور وہاں کی تمام سیاست، اقتصاد اور سیکورٹی پر قابض رہنا چاہتا ہے۔
ویسے یہ بات تو خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ داعش کا گٹھن اوباما نے کیا تھا۔ ٹیکہ کار راشد عہد کا کہنا ہے کہ آج بھی عراق میں امریکہ کی نیت صاف نہیں ہے۔
عراق میں لانچ کیا گیا داعش کو اور داعش ایسا لگا کہ پورے عراق پر قبضہ کر لے گی، تو اس وقت خود امریکہ اس کی، یعنی کہ عراقی حکومت یا عراقی فوج کے سپورٹ میں کیوں نہیں آیا؟ بالآخر جو عراق کی حکومت کو اور عراق کی گویا کہ فوج کو ایران کی حمایت لینی پڑی، اور وہ ایران تھا جس نے، قاسم سلیمانی تھے جنہوں جا کر کے دین اینڈ دیئر اسی وقت فوراً جا کر کے اور صورتحال کا جائزہ لیا اور ایک عوامی رضا کار فورس کھڑی کر دی، اس میں ٹریننگ بھی، پھر وہ لڑے بھی، اور 2017 میں اسی پالیسی اور انہی کوششوں کے نتیجے میں داعش جو ہے بالکل پسپا ہوئی۔ لیکن امریکہ پھر داعش کو کہیں نہ کہیں اس کو ماؤنٹین میں، پہاڑوں میں، کہیں ڈیزرٹ ایریے میں ان کو ابھی تک پشت پناہی کر رہا ہے۔ عراق کی اقتصادی معاملات اور سیکورٹی کے معاملات اور سیاسی معاملات یا حکومتی معاملات پر پوری طرح اثر انداز رہے اور ان کو اپنی پالیسی سے ہم آہنگ رکھے۔
अमरीका और उसके घटकों के खिलाफ सीरिया में भी प्रतिरोध तेज हो गया है। अमरीका ने सीरिया में कुर्द फोर्सेस की मदद से उन इलाकों पर कब्जा कर रखा है जहां तेल और गैस के भंडार हैं। सीरिया के लोगों में भी अमरीका के खिलाफ आक्रोश है और बार बार अमरीकी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। अमरीकी ठिकानों पर रॉकेटों से भी हमले हो रहे हैं और ये खबरें आए दिन पश्चिमी मीडिया में आ रही हैं।
The US says its troops stationed in Syria have been attacked by multiple rockets but escaped injuries. In a tweet, military spokesperson Colonel Wayne Marotto said US forces responded by firing back at the positions in self-defense.
इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने नई चाल चली। अमेरिका ने इलाके में अरब कबीलों के सरदारों के पास अपने दूत भेजे और ये संदेश दिया कि सब मिलकर एक फोर्स बनाएं जो अमेरिकी सेना के साथ मिलकर सीरियाई सेना से युद्ध करे। पूर्वी फुरात के इलाके से आने वाली खबरें बताती हैं कि अमेरिकी सैनिक अधिकारी CIA के एजेंटों और स्थानीय अनुवादकों के साथ कई शहरों और बस्तियों में गए और उन्होंने बनी सबआ सहित कई कबीलों के सरदारों से मुलाकात की। अमरीकियों ने कबायली सरदारों के सामने बड़े लुभावने प्रस्ताव रखे मगर कबायली सरदारों ने अमरीकी प्रस्ताव ठुकरा दिया और अमरीकी दूतों को बुरी तरह खदेड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सीरियाई सरकार के वफादार हैं और सरकार के साथ मिलकर अमरीकी कब्जे का मुकाबला करेंगे। वरिष्ठ टीकाकार मीसम हमदानी का कहना है कि सीरिया में विश्व ताकतों की साजिशें नाकाम हुई, ईरान के नेतृत्व वाले मोर्चे को कामयाबी मिली।
यहाँ पर दर हकीकत बशार असद के साथ जो पावर खड़ी हुई इन दहशतगर्दों के मुकाबले में और उनके लीडर्स के मुकाबले में, वो कुव्वतें जो कि अवाम की नुमाइंदा थी, जो कि अवाम और कौमें और मिल्लतें उनकी मुखालिफ हैं, और ये अकवाम है कि जो अपने मफादात को, अपने मुनाफे को, अपने जो है जखायर को वो नहीं चाहती कि इस्तेमार किया जाए। ये मुकावमत और शुजात जो है, इसने बशार असद को वो इज्जत दी और उसको जो है महबूबियत और मकबूलियत दी कि आज वो खड़े हैं। और ये दर्द इबरत है हम सब के लिए और तमाम अकवाम के लिए और मुसलमान ममालिक के अंदर मौजूद जो जितने भी लीडर हैं, ये उन सब के लिए दर्द से इबरत है कि अगर वो मुकावमत और मुजाहमत दिखाएंगे, शुकाएंगे, तो अवाम के अंदर उनकी इज्जत है।
अरब जगत के कुछ टीकाकार ये मानते हैं कि अमेरिका की समझ में ये बात नहीं आती कि जमाना बदल गया। सबने देख लिया कि इराक, सीरिया, लीबिया और यमन में अमेरिकी योजनाओं से किस बड़े पैमाने पर तबाही मची। सबको यकीन हो चुका है कि अमेरिका झूठे वादे करने में माहिर है। सीरिया और इराक से अमरीकियों को मार भगाने के लिए प्रतिरोध शुरू हो चुका है जो दोनों देशों से आखिरी अमरीकी सैनिक के निकल जाने तक जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। अमेरिका हार चुका है, केवल सीरिया और इराक में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के इलाके में उसकी शिकस्त हो चुकी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बिना शर्त बाहर निकलना पड़ा है, इसी तरह सीरिया और इराक से भी उसे शिकस्त का मजा चखने के बाद निकलना पड़ेगा। दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
जल संकट।
दोस्तों, कार्यक्रम जल संकट की करने कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। आज हम प्राचीन ईरान में जल आपूर्ति और पानी की निकासी के सिस्टमों के बारे में बात करेंगे।
प्राचीन काल में शुष्क व अर्ध शुष्क इलाकों के लोग पानी के अधिक स्रोत हासिल करने के लिए हर संभव कोशिशें किया करते थे। वे अधिकतर जमीन के ऊपर बहने वाले जल स्रोतों से पानी हासिल करने और उसे स्टोर करने का काम करते थे। पुराने समय से ही पानी अलग अलग रूपों में दिखाई देता रहा है। ईरानी पठार की सभ्यता भी इससे अलग नहीं थी, बल्कि ईरानी पानी की सही पहचान, उसके सही उपयोग और जल भंडारों के मामलों में सबसे आगे रहने वालों में से थे। प्राचीन काल में ईरानी जीवन के स्रोत के रूप में पानी का सम्मान करते थे, जो वनस्पतियों, पशुओं और इंसानों के जीवन को सुनिश्चित बनाता है। प्राचीन ईरानियों की आस्था थी कि ईश्वर ने धरती में जिन 7 प्रमुख वस्तुओं की रचना की है, उनमें पानी दूसरे नंबर की रचना है। उनकी आस्था के अनुसार पानी ने आसमान के आधे निचले हिस्से को भर रखा है और ये सब जमीन के अंदर है।
वरुक्षा नाम का एक बड़ा सागर है जो अविस्तायी इलाके में स्थित है, और अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि यह इलाका कैस्पियन सी, हिंद महासागर या फारस की खाड़ी है। यह पानी एकत्रित होने का स्थान है और एक अफसानवी नदी से इस तक पानी पहुंचता है। इससे 2 अन्य नदियां निकली हैं और ये नदियां जमीन को घेर लेती है। इन 2 नदियों के करीब बरसाती बादलों के रूप में भाप फैली हुई है, इसलिए वह सारा पानी जो जमीन पर आया या जमीन से बाहर निकला वो वृक्षा से आया है, और छोटे से छोटे पेड़ या धूल को पानी के अस्तित्व में आने का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। चूंकि पानी की रचना उनकी जिंदगी के लिए जरूरी थी, इसलिए प्राचीन ईरानी पानी को स्वच्छ रूप में बाकी रखते थे।
प्राचीन काल के ईरानी हमेशा पानी को साफ करने और उसका भंडारण करने, उसकी रक्षा व सही इस्तेमाल करने, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसके वितरण में सक्षम होने की वजह से बहुत मशहूर रहे हैं। जिन इलाकों में पानी बहुत कम होता था, वहां पानी के वितरण का सही संचालन अपने आप में एक चुनौती था। इस चुनौती से निपटना, स्वयं को बाकी व हरा भरा रखने के एक सभ्यता के संकल्प की निशानी है।
पुराने समय में ईरान में जो भी ढांचे या इमारतें बनाई जाती थी, वे पानी को मद्देनजर रखकर बनाई जाती थी, और इस समय भी उनमें से कुछ को देखा जा सकता है और यह समझा जा सकता है कि सदियों तक किस तरह इस देश में पानी का संचालन और उसका सम्मान किया गया है। पुरातनविद डॉक्टर कामयार अब्दी इस बारे में कहते हैं कि प्राचीन काल के ईरानी 1000 साल पहले इस बात के मद्देनजर कि वे अर्ध शुष्क इलाके में जीवन बिता रहे थे, विभिन्न कामों में अपनी जरूरत के पानी की आपूर्ति के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखते थे। वे इस बात से अवगत है कि प्रकृति से मजाक नहीं किया जा सकता और प्राकृतिक कारकों के मुकाबले में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी समस्या में ग्रस्त न हुआ जाए। इसीलिए उन्होंने इस मामले में उचित ज्ञान हासिल कर लिया था।
डॉक्टर अब्दी इस बात पर जोर देते हुए कि उपजाऊ जमीनें और बड़ी मात्रा में पानी सभ्यता की पृष्ठभूमि बनते हैं, कहते हैं कि ईरान के दक्षिण पश्चिम में उत्तरी खुजिस्तान के शूश शहर के आसपास बहुत अधिक उपजाऊ ज़मीनें हैं। ये इलाका ईरान में सभ्यता की एक जन्म स्थली है। ज़ागरूस के केंद्र में शिराज के 40 किलोमीटर उत्तर में एक बड़ा मैदान है जिसमें खेती के लिए आवश्यक मात्रा में पानी और पशुपालन के लिए काफ़ी चरागाहें हैं। ये मैदान भी सभ्यता की एक जन्मस्थली है और यहीं शहर बसाने की आरंभिक आधारशिला रखी गई थी।
जब से ईरान में शहर बसने शुरू हुए तभी से एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने के कारण लोगों की जीवन शैली अधिक सैद्धांतिक हो गई और पानी की निकासी के सिस्टम का आरंभ उन शैलियों में से एक था जो इंसान ने काफी पहले से अधिक बेहतर पर्यावरण और जीवन के माहौल के लिए अपनाई थी। अब सवाल यह है कि प्राचीन ईरानियों ने पानी की निकासी का जो सबसे पुराना सिस्टम तैयार किया था वह कहाँ है।
प्राचीन ईरान में पानी की आपूर्ति और निकासी का काम अलग अलग तरीकों से अंजाम पाता था। चगा जम्बील, तख्ते जमशीद और बेहबहान के बंदे मारून में पानी की आपूर्ति व निकासी की उचित व्यवस्था थी। तख्ते जमशीद या पेर्सपोलिस में पानी की निकासी के सबसे पुराने सिस्टमों में से एक सिस्टम मिला है। ये सिस्टम इस प्रकार का है कि बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी को पत्थरों के अंदर बनी हुई नालियों के माध्यम से नीचे पहुंचाया जाता था। कोह रहमत और कोह सुफ़े नामक पहाड़ों से नालियों के माध्यम से पानी को तख्ते जमशीद में पहुंचाया जाता था।
तख्ते जमशीद के प्रांगण में पानी की आपूर्ति का पहला रास्ता मिलने के बाद इस बेजोड़ वैश्विक धरोहर में होने वाली नई खोज से पता चलता है कि इस पूरे महल में पानी की आपूर्ति और निकासी का एक और सिस्टम था और यह सिस्टम अब भी बारिश के पानी को तख्ते जमशीद के प्रांगण से बाहर पहुंचाने में उपयोगी है।
तख्ते जमशीद में की जाने वाली खुदाई और खोज में जलापूर्ति तथा पानी की निकासी के नेटवर्क के कुछ नए भाग सामने आए हैं जो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। ये भूमिगत जलमार्ग 5वीं सदी ईसा पूर्व में हखा मनेशी वास्तुकला की विशेषताओं के साथ बनाए गए हैं। इनमें से कुछ जलमार्ग तो 5 से 6 मीटर ऊँचे हैं। ये जलमार्ग भूमिगत टनल और अनेक नालियों के रूप में बनाए गए हैं जो तख्ते जमशीद के पानी को शहर के बाहर पहुंचाते थे।
सन 1930 में तख्ते जमशीद में की जाने वाली पहली पुरातन जांच में कई जल मार्ग सामने आए थे लेकिन उनमें से अधिक का खनन नहीं किया गया था। पिछले वर्षों में इस वैश्विक धरोहर के विभिन्न भागों में बारिश का पानी रुकने और जल भराव के चलते पानी खाली करने के लिए मजबूत पंपों का इस्तेमाल किया गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से पुरातनविदों ने इन जलमार्गों को बहाल करने और उन्हें फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके नतीजे में यह बात स्पष्ट हुई कि यह जलमार्ग अब भी उपयोगिता रखते हैं और उनमें अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की पूरी क्षमता है। इन जलमार्गों की गहराई अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन उनकी चौड़ाई लगभग 60 सेंटीमीटर है। इसी तरह इन जलमार्गों की दिशा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम है।
यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि तख्ते जमशीद ईरान की सबसे अहम पुरातत्विक व सांस्कृतिक धरोहर है जिसका निर्माण सन 512 ईसा पूर्व में दारियूश महान प्रथम के आदेश पर हुआ था। उसके पोते अर्धशीर प्रथम ने इसका निर्माण जारी रखा। ईरान के प्राचीन दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार तख्ते जमशीद के निर्माण में 120 से 150 साल का समय लगा था। पत्थरों से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स फारस प्रांत के शिराज शहर के करीब स्थित कोहे रहमत नामक पहाड़ के आंचल में बना हुआ है। सन 1979 में तख्ते जमशीद को यूनेस्को ने वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल किया था।
पुरातनविद डॉक्टर कामयार अब्दी का कहना है कि तख्ते जमशेद में पानी की आपूर्ति के 3 सिस्टम थे जिनमें से एक कोहे रहमत से पानी को भूमिगत जल भंडारों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था और इस पानी को धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा पानी की निकासी के भी दो सिस्टम थे, जिनमें से एक प्रसाधन के लिए और दूसरा बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। अलबत्ता पानी की निकासी के सिस्टम या सीवरेज का जो रूप आज प्रचलित है वह हसनलू टीले और उससे पहले इलामी शासनकाल में दिखाई देता है। बहरहाल जलापूर्ति का सबसे अहम सिस्टम सिस्तान व बलूचिस्तान में प्राचीन समय में स्थित ईरान के शहरे सुकते या बर्न्ट सिटी में देखा जा सकता है, जो लगभग 2500 साल पुराना है।
यहीं पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन मिस्र में भी इस तरह की चीजें मौजूद थी, लेकिन भारत में पानी की निकासी का यह तरीका ईरान के साथ ही शुरू हुआ और सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरों में पानी को एकत्रित करने के विकसित सिस्टम मौजूद थे। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम जल संकट की ये कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। Thank you.